क्या कभी इस बात पर ध्यान गया है कि हर साल जनवरी के पहले हफ्ते में जिम एकदम खचाखच भरे होते हैं और 15 जनवरी आते आते वही जिम बिल्कुल खाली हो जाते हैं?
हाँ बिल्कुल, और अगर आंकड़ों की माने तो 92% नए साल के रेजोल्यूशंस पहले ही महीने में दम तोड़ देते हैं।
सही कहा। और हम लोग अक्सर इसके लिए अपनी इच्छा शक्ति या विल पावर को कोसने लगते हैं कि यार मेरे अंदर ही कमी है।
लेकिन आज की इस गहरी चर्चा में हम देखेंगे कि विज्ञान कुछ और ही कहता है।
बिल्कुल, विज्ञान के अनुसार हमारा दिमाग रातों रात होने वाले बड़े बदलावों को स्वीकार करने के लिए बना ही नहीं है। मैं यही सोच रहा था कि अपनी पूरी जिंदगी को बदलने का असली रहस्य शायद कोई बहुत बड़ा कदम उठाना नहीं है।
एकदम सही सोच रहे थे आप, और यही आज की हमारी इस खास चर्चा का मुख्य उद्देश्य भी है। हमारे पास जो स्रोत हैं उनके जरिए हम उन मनोवैज्ञानिक और जैविक कारणों को समझेंगे जो आदतों को बनाते या बिगाड़ते हैं।
मतलब ये कोई मोटिवेशनल बात नहीं है, पूरी तरह से विज्ञान है।
एग्जैक्टली। अब ये वो देखेंगे कि कैसे ये छोटी आदतें हमें डिजिटल भटकाव से बचा सकती हैं और कैसे इनके जरिए कोई भी इंसान मिशन सरकारी यानी किसी कठिन प्रतियोगी परीक्षा को पास कर सकता है।
तो चलिए उस सिस्टम डिजाइन को डिकोड करते हैं। जब भी बदलाव की बात आती है तो हमारे दिमाग में हमेशा नौकरी छोड़ना, शहर बदलना या अपनी पूरी दिनचर्या को अचानक से पलट देने जैसे बड़े विचार ही क्यों आते हैं?
ये बहुत आम बात है, लेकिन स्रोतों में इस बात पर जोर दिया गया है कि बड़े लक्ष्य असल में हमारे दिमाग के अंदर एक फ्रिक्शन, एक मानसिक रुकावट पैदा करते हैं।
अच्छा, तो ये फ्रिक्शन असल में काम कैसे करता है, मतलब दिमाग में होता क्या है?
इस फ्रिक्शन को समझने के लिए हमें थोड़ा दिमाग की बनावट को देखना होगा। देखिए, हमारे दिमाग में एक हिस्सा होता है एमिग्डाला, जो खतरे को भांपने का काम करता है।
राइट, जो हमें अलर्ट करता है।
हाँ, विकासवाद या एवोल्यूशन के नजरिए से देखें तो किसी भी तरह का अचानक और बड़ा बदलाव हमारे दिमाग के लिए एक खतरे की घंटी होता है।
ओह, तो मतलब नया लक्ष्य एक खतरा है।
बिल्कुल, जब हम खुद से कहते हैं कि कल से रोज 10 किलोमीटर दौड़ना है तो अमिग्डाला इसे एक बड़े खतरे के रूप में देखता है और हमारे शरीर में फाइट या फ्लाइट रिस्पॉन्स ट्रिगर कर देता है।
बाप रे, यही वो मानसिक थकान या फ्रिक्शन है जो हमें सोफे से उठने ही नहीं देता, है ना?
एग्जैक्टली। इसके विपरीत जब हम कहते हैं कि मुझे सिर्फ अपने दौड़ने वाले जूते पहनने हैं तो ये कदम इतना छोटा होता है कि अमिग्डाला की खतरे की घंटी नहीं बजती। हम बिना किसी मानसिक विरोध के वो काम कर लेते हैं।
इसका मतलब है कि हम अपने ही दिमाग के सुरक्षा तंत्र को चकमा दे रहे हैं।
जी हाँ, बिल्कुल सही पकड़ा आपने।
और एक बार जब ये छोटी सी आदत शुरू हो जाती है तो स्रोतों के अनुसार ये कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज की तरह काम करने लगती है।
बिल्कुल, और गणित के हिसाब से देखें तो अगर हम रोज खुद को सिर्फ 1% बेहतर बनाते हैं तो एक साल के अंत में हम पहले के मुकाबले 37 गुना बेहतर हो जाते हैं।
37 गुना, क्या बात है। ये सिर्फ एक मोटिवेशनल कोट नहीं है बल्कि ये एक गणितीय सच्चाई है जो हमारे जीवन के हर पहलू पर लागू होती है।
हाँ, और यहाँ एक बहुत गहरी मनोवैज्ञानिक शिफ्ट भी होती है जिसे आइडेंटिटी ओवर आउटकम्स कहा गया है।
आइडेंटिटी ओवर आउटकम्स मतलब परिणाम से ज्यादा अपनी पहचान पर फोकस करना।
सही कहा, हम अक्सर परिणामों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जैसे कि मुझे 10 किलो वजन कम करना है या मुझे एक किताब लिखनी है, लेकिन असली बदलाव तब आता है जब हम अपनी पहचान बदलने पर काम करते हैं।
तो अगर मैं रोज एक वाक्य लिखता हूँ तो मैं सिर्फ किताब पूरी नहीं कर रहा हूँ बल्कि मैं एक लेखक बन रहा हूँ।
एग्जैक्टली। जब हम रोज एक वाक्य लिखते हैं तो हम अपने दिमाग के न्यूरल पाथवेज को ये बता रहे होते हैं कि मैं एक लेखक हूँ। हर बार जब हम 1 मिनट के लिए भी ध्यान करते हैं तो हम उस नई पहचान के लिए एक वोट डाल रहे होते हैं।
क्या बात है, हमारा दिमाग परिणामों से ज्यादा इस नई पहचान को सुरक्षित रखने की कोशिश करता है। अगर हम इसे एक एनालॉजी से समझें तो क्या सीधे मैराथन दौड़ने का लक्ष्य बनाना कुछ वैसा ही है जैसे जिम के पहले ही दिन 100 किलो वजन उठाने की कोशिश करना?
हाँ, बिल्कुल सटीक एनालॉजी है।
मतलब वो भी तब जब हमने कभी 5 किलो भी ना उठाया हो।
जब हम सीधे 100 किलो उठाने की कोशिश करेंगे तो मांसपेशियां फट सकती हैं और इंसान शायद हफ्तों तक दोबारा जिम की तरफ देखेगा भी नहीं।
एकदम सही, शायद बड़े लक्ष्य हमें इसी तरह मनोवैज्ञानिक चोट पहुंचाते हैं। ये तुलना ये समझने के लिए एकदम सही है कि असफलता का डर कैसे जन्म लेता है। जब वो 100 किलो का वजन नहीं उठता तो दिमाग में डोपामिन का स्तर घिर जाता है और हमें निराशा घेर लेती है। इसीलिए शुरुआत छोटी होनी चाहिए ताकि हमें तुरंत एक छोटी सी जीत का एहसास हो।
और मुझे लगता है यहीं से डोमिनोज प्रभाव शुरू होता है। बिल्कुल, और ये सिर्फ एक घटना के बाद दूसरी घटना होने के बारे में नहीं है। इसके पीछे क्यू, क्रेविंग, रिस्पॉन्स, रिवॉर्ड का पूरा न्यूरोलॉजिकल लूप काम करता है।
इस लूप को थोड़ा और स्पष्ट करते हैं। श्रोत में जो डोमिनोज प्रभाव का जिक्र है, उसमें बताया गया है कि सुबह उठकर सिर्फ एक ग्लास पानी पीने की छोटी सी आदत कैसे पूरे दिन को बदल सकती है। लेकिन दिमाग के स्तर पर ये कैसे होता है?
देखिए, जब हम सुबह एक ग्लास पानी पीते हैं तो वो एक रिस्पॉन्स है। इसके बाद शरीर को हाइड्रेशन मिलता है, जिससे हमें थोड़ी ताजगी महसूस होती है। ये हमारा रिवॉर्ड है।
अच्छा, तो दिमाग को इनाम मिल गया?
हाँ, दिमाग का बेसल गैंग्लिया हिस्सा इस रिवॉर्ड को रजिस्टर कर लेता है। अगली बार के लिए ये ताजगी हमारी क्रेविंग या लालसा बन जाती है।
मेक सेंस।
क्योंकि अब हमारे पास थोड़ी ज्यादा ऊर्जा है, तो नाश्ते के समय जंक फूड की जगह सेब चुनना आसान हो जाता है, क्योंकि दिमाग अब उन विकल्पों की तलाश कर रहा है जो इस अच्छी भावना को बनाए रखें।
इसे हैबिट स्टैकिंग भी कहते हैं ना, जहां एक अच्छी आदत दूसरी अच्छी आदत के लिए एक न्यूरोलॉजिकल ट्रिगर का काम करती है।
जी, बिल्कुल सही कहा आपने।
सो, हम इन अच्छी आदतों और उनके कंपाउंडिंग प्रभाव की बात कर रहे हैं, लेकिन आज के दौर में ये सब इतना सीधा नहीं है यार।
वो कैसे?
मेरा मतलब है, हमारी जेब में ही एक ऐसी मशीन मौजूद है जिसे दुनिया के हजारों सबसे बेहतरीन वैज्ञानिकों और इंजीनियरों ने डिजाइन किया है, ताकि वो हमारे इस हैबिट लूप को हैक कर सकें।
आप स्मार्टफोन की बात कर रहे हैं?
जी हाँ। अगर फोन को एक हैबिट लूप के चश्मे से देखें, तो यह हमारे फोकस को कैसे तोड़ता है? यह एक स्मार्ट टूल है या स्मार्ट ट्रैप?
ये एक बहुत ही अहम सवाल है। देखिए, स्मार्टफोन का पूरा बिजनेस मॉडल वेरिएबल रिवॉर्ड शेड्यूल पर टिका है। ये बिल्कुल कसीनो में रखी स्लॉट मशीन की तरह काम करता है।
कसीनो? वो कैसे?
जब फोन की स्क्रीन पर कोई नोटिफिकेशन आता है या वो बीप करता है, तो वो एक क्यू है। हमें नहीं पता कि वो संदेश किसी दोस्त का है, कोई स्पैम है या सोशल मीडिया का कोई लाइक है।
अच्छा, तो वो जो अनिश्चितता है वो मेन चीज है।
एग्जैक्टली। ये जो अनिश्चितता है, यही दिमाग में डोपामाइन का एक बड़ा स्पाइक पैदा करती है। ये डोपामाइन हमें फोन उठाने के लिए मजबूर करता है।
ओ, मतलब रिस्पॉन्स।
हाँ, और अगर वहाँ कुछ दिलचस्प मिल गया जो कि रिवॉर्ड है, तो हमारा दिमाग उस लूप को हमेशा के लिए पक्का कर लेता है।
यही वजह है कि पढ़ाई या किसी गहरे काम के बीच में सिर्फ एक बार फोन चेक करने की आदत, जिसे हम बहुत छोटी सी आदत मानते हैं, एक नेगेटिव डोमिनोज प्रभाव शुरू कर देती है और घंटों बर्बाद कर देती है।
बिल्कुल। और ये सिर्फ समय की बर्बादी तक सीमित नहीं है, इसके शारीरिक और संज्ञानात्मक नुकसान भी है।
हाँ, डीप वर्क यानी पूरी एकाग्रता के साथ काम करना लगभग असंभव होता जा रहा है।
सही कहा। और स्वास्थ्य के मोर्चे पर श्रोत स्पष्ट रूप से समझाते हैं कि स्क्रीन से निकलने वाली ब्लू लाइट हमारे पीनियल ग्रंथि को धोखा देती है।
धोखा देती है, मतलब उसे लगता है कि अभी दिन है।
एग्जैक्टली। जिसकी वजह से वो मेलाटोनिन, जो कि नींद का हार्मोन है, उसका उत्पादन रोक देती है। इससे हमारी नींद का पूरा आर्किटेक्चर बिगड़ जाता है।
बाप रे।
इसके अलावा लगातार नीचे स्क्रीन की तरफ देखने से टेक नेक की समस्या पैदा होती है, जिससे सर्वाइकल स्पाइन पर 10 से 15 किलो का अतिरिक्त दबाव पड़ता है।
और इसके साथ ही कॉग्निटिव ओवरलोडिंग का खतरा भी है।
ये कॉग्निटिव ओवरलोडिंग क्या होता है?
देखिए, आजकल हम AI टूल्स, स्पेल चेक और हर छोटी चीज के लिए गूगल पर निर्भर रहने लगे हैं। इससे हमारे दिमाग का हिप्पोकैम्पस, जो याददाश्त और सीखने के लिए जिम्मेदार है, उसे कसरत करने का मौका ही नहीं मिल रहा।
ओह, मतलब हम अपनी सोचने की क्षमता आउटसोर्स कर रहे हैं।
बिल्कुल। अगर हम अपनी सारी याददाश्त और सोचने की क्षमता फोन को सौंप देंगे, तो हमारी खुद की न्यूरल नेटवर्किंग कमजोर पड़ जाएगी।
लेकिन फोन को पूरी तरह से छोड़ देना भी तो समाधान नहीं है ना? स्रोतों में इसे पॉकेट क्लासरूम भी कहा गया है।
हाँ, एकदम सही बात है।
तो सवाल ये है कि हम इस वेरिएबल रिवॉर्ड वाले हैक से कैसे बचें और फोन को अपने लिए एक स्मार्ट टूल कैसे बनाएं?
इसका जवाब उस फ्रिक्शन में है जिसकी हमने पहले चर्चा की थी। अगर अच्छी आदतें बनानी है तो फ्रिक्शन कम करना होगा, और अगर बुरी आदतें छोड़नी है तो फ्रिक्शन बढ़ाना होगा।
अच्छा, मतलब फोन इस्तेमाल करने में रुकावट पैदा करें।
एग्जैक्टली। इसीलिए श्रोत आउट ऑफ साइट नियम का सुझाव देते हैं। अगर पढ़ाई करते समय फोन दूसरे कमरे में है, तो उसे चेक करने के लिए उठकर जाना पड़ेगा।
राइट। ये शारीरिक दूरी एमिगडाला के लिए एक बड़ा फ्रिक्शन बन जाती है और दिमाग सोचता है कि छोड़ो, कौन उठकर जाए।
बिल्कुल। दूसरा तरीका है फोन के अंदर मौजूद फोकस मोड का इस्तेमाल करना। ये मोड अनिश्चितता वाले सारे नोटिफिकेशंस को ब्लॉक कर देता है, जिससे डोपामाइन स्पाइक ट्रिगर ही नहीं होता।
बहुत बढ़िया। और यहीं पर हम फोन का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए कर सकते हैं, जैसे पोमोडोरो मेथड।
हाँ, ये एक बेहतरीन टूल है।
ये तकनीक कहती है कि 25 मिनट पूरी एकाग्रता से काम करें और फिर 5 मिनट का ब्रेक लें। यह तरीका इसलिए काम करता है क्योंकि हम अपने दिमाग को बता रहे हैं कि हमें घंटों तक लगातार नहीं पढ़ना है।
सही कहा, हमें सिर्फ 25 मिनट के लिए फोकस करना है। ये इतना छोटा लक्ष्य है कि दिमाग इसके लिए कोई मानसिक रुकावट पैदा नहीं करता।
और हम अलार्म सेट करने के लिए फोन का इस्तेमाल कर सकते हैं, नोशन पर नोट्स बना सकते हैं, या डुओलिंगो और खान अकेडमी जैसे ऐप से नई चीजें सीख सकते हैं।
बिल्कुल, क्योंकि ये एजुकेशनल ऐप्स भी उसी गेमिंग न्यूरोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन एक सकारात्मक दिशा में।
राइट।
और अपनी प्रगति को मापने के लिए अपने स्क्रीन टाइम का ऑडिट करना बहुत जरूरी है। अगर दिन के अंत में रिपोर्ट दिखा रही है कि 4 घंटे एंटरटेनमेंट ऐप्स पर और सिर्फ 1 घंटा प्रोडक्टिव काम पर गया है, तो ये डेटा हमारे सामने शीशा रख देता है।
सही बात है, जो चीज मापी नहीं जा सकती उसे सुधारा भी नहीं जा सकता।
एग्जैक्टली।
अगर हम अपनी आदतों को इस तरह से हैक करना सीख जाएं और अपने डिजिटल उपकरणों के मास्टर बन जाएं, तो क्या इस फ्रेमवर्क से किसी बहुत बड़े और असंभव लगने वाले लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है?
बिल्कुल किया जा सकता है,
क्योंकि मिशन सरकारी वाला स्रोत हमें इसी दिशा में ले जाता है। यूपीएससी, एसएससी, बैंकिंग या रेलवे जैसी परीक्षाएं जिनका सिलेबस इतना विशाल होता है कि उसे देखकर किसी का भी दिमाग फ्रिक्शन से भर जाए, इन परीक्षाओं के लिए छोटी आदतों का विज्ञान कैसे काम करता है?
देखिए, प्रतियोगी परीक्षाएं असल में इंसान की बौद्धिक क्षमता से ज्यादा उसकी मनोवैज्ञानिक दृढ़ता की परीक्षा होती हैं।
कैसे? वही अमिग्डाला वाला रिएक्शन।
हाँ, लेकिन सफलता का रहस्य उस पूरे पहाड़ को एक साथ देखने में नहीं, बल्कि उसे छोटे छोटे कंकड़ों में तोड़ने में है। श्रोत बताता है कि बेसिक्स जैसे गणित, रीजनिंग, सामान्य ज्ञान और इंग्लिश, इन पर पकड़ रातों रात नहीं बनती।
बिल्कुल, इसका एक बहुत ही शानदार उदाहरण श्रोतों में दिया गया है, रोजाना अखबार पढ़ना।
हाँ, ये बहुत जरूरी है।
अगर कोई द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस का रोज सिर्फ एक आर्टिकल पढ़ता है, या जीके टुडे जैसे ऐप पर रोजाना सिर्फ 10 मिनट करंट अफेयर्स पढ़ता है, तो शुरू में लगता है कि यार इससे क्या ही फर्क पड़ेगा।
लेकिन यही स्पेस रिपीटेशन का सिद्धांत काम करता है।
स्पेस्ड रिपीटेशन।
जी, जब हम रोज थोड़ा थोड़ा नया ज्ञान हासिल करते हैं, तो हमारे दिमाग में एक न्यूरल वेब बन जाता है। एक साल बाद परीक्षण में जब कोई नया सवाल सामने आता है, तो दिमाग तुरंत उस पुराने पढ़े हुए ज्ञान से कनेक्ट कर लेता है।
राइट। ये रातों रात रट्टा मारने से कभी हासिल नहीं हो सकता।
एग्जैक्टली। और इसीलिए कॉलेज के दिनों में ही एक रूटीन बनाना सबसे कारगर साबित होता है। स्रोत में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही गई है कि रोजाना सिर्फ 2-3 घंटे की पढ़ाई भी काफी हो सकती है।
विप, यहां मैं थोड़ा असहमत हूँ।
अच्छा?
हाँ, मतलब यूपीएससी जैसी परीक्षा जहाँ लाखों लोग दिन रात एक कर देते हैं, वहाँ क्या रोज सिर्फ 2-3 घंटे की पढ़ाई की सलाह देना व्यवहारिक है? क्या ये बहुत कम नहीं है?
ये एक बहुत ही लाजमी सवाल है, लेकिन हमें यहाँ कंसिस्टेंसी बनाम इंटेंसिटी के विज्ञान को समझना होगा।
मतलब दिमाग थक जाता है।
हाँ, हमारे दिमाग की एक दिन में नई जानकारी को प्रोसेस करने की एक सीमा होती है। जब हम सोते हैं, तब हिप्पोकैम्पस दिन भर की जानकारी को शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी में ट्रांसफर करता है।
ओह, तो नींद जरूरी है।
बिल्कुल, अगर हम एक ही दिन में बहुत ज्यादा जानकारी ठूस लेंगे, तो वो प्रोसेस नहीं हो पाएगी और हम अगले दिन सब भूल जाएंगे।
अच्छा, तो इसीलिए रोजाना थोड़ा पढ़ना बेहतर है।
जी, इसीलिए रोजाना 2-3 घंटे की उच्च स्तर की फोकस वाली पढ़ाई बिना किसी डिजिटल भटकाव के और उसे महीनों तक लगातार करना, ये किसी भी दिन 15 घंटे की अव्यवस्थित पढ़ाई से ज्यादा नतीजे देती है।
क्या बात है, अगर इसे एक एनालॉजी से समझें तो ये बिल्कुल एक पौधे को पानी देने जैसा है।
दिलचस्प एनालॉजी है,
है ना? अगर हम एक बीज बोते हैं और उसे रोज थोड़ा थोड़ा पानी देते हैं, तो वो धीरे धीरे जड़ें जमाता है और एक मजबूत पेड़ बनता है। लेकिन अगर हम सोचें कि हम पूरे महीने भर का पानी एक ही दिन में उस पौधे पर उड़ेल देंगे, तो पौधा बड़ा नहीं होगा, बल्कि उसकी जड़ें गल जाएंगी और वो मर जाएगा।
बहुत खूब, हमारी याददाश्त और न्यूरल नेटवर्क भी उसी पौधे की तरह काम करते हैं। उन्हें पनपने के लिए समय और लगातार पोषण की जरूरत होती है।
राइट। ये एनालॉजी मेमोरी कंसोलिडेशन की प्रक्रिया को बहुत सलीके से समझाती है। इसी निरंतरता को बनाए रखने के लिए सही माहौल का होना भी जरूरी है। मिशन सरकारी स्रोत स्टडी ग्रुप्स बनाने की सलाह देता है, क्योंकि इंसान एक सामाजिक प्राणी है।
जब हम दूसरों को पढ़ते देखते हैं, तो हमारे अंदर के मिरर न्यूरॉन्स हमें भी वैसा ही करने के लिए प्रेरित करते हैं।
एग्जैक्टली इसके अलावा मॉक टेस्ट देना इसलिए जरूरी है क्योंकि वो हमारे दिमाग को परीक्षा वाले दिन के तनाव का अभ्यास कराता है।
सही कहा। और सबसे अहम बात, इस लंबी प्रक्रिया में अपनी हॉबीज को जिंदा रखना, ध्यान करना या ब्रेक लेना, ये कोई समय की बर्बादी नहीं है, बल्कि ये दिमाग को रिकवर होने और नए सिरे से फोकस करने के लिए जरूरी ऑक्सीजन देने जैसा है।
तो अगर हम आज की इस पूरी चर्चा के धागों को एक साथ जोड़ें तो तस्वीर बहुत साफ हो जाती है। चाहे बात अपनी सेहत सुधारने की हो, स्मार्टफोन के चक्रव्यूह से बाहर निकलने की हो, या फिर कोई बहुत बड़ी प्रतियोगी परीक्षा पास करने की हो, सफलता कभी भी किसी एक बड़े नाटकीय छलांग का नतीजा नहीं होती।
बिल्कुल,
ये उन अनगिनत छोटे और अदृश्य कदमों का परिणाम है जो हम रोज उठाते हैं।
सही कहा आपने। और इस पूरी चर्चा से हम श्रोताओं के लिए 3 बहुत ही स्पष्ट और वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित टिप्स निकाल सकते हैं जिन्हें आज ही लागू किया जा सकता है।
तो चलिए वो 3 टिप्स भी बता दीजिए।
पहला टिप है, बहुत ही छोटी शुरुआत करें। अपने अमिग्डला को खतरे का सिग्नल मत दीजिए। अगर पढ़ना शुरू करना है तो एक चैप्टर का लक्ष्य मत रखिए, सिर्फ किताब खोलकर एक पैराग्राफ पढ़ने का लक्ष्य रखिए। फ्रिक्शन को इतना कम कर दीजिए कि काम करना आसान हो जाए।
मेक सेंस। और दूसरा टिप है, आदतों की हैबिट स्टैकिंग या एंकरिंग करें। नई आदत को शून्य से शुरू करने के बजाय उसे किसी ऐसी पुरानी आदत के साथ जोड़ दें जो दिमाग के बेसल गैंग्लिया में पहले से ही पक्की हो चुकी है।
जी,
जैसे अगर रोज सुबह कॉफी पीने की आदत है तो नियम बना लें कि कॉफी मशीन के चालू रहने के उस 1 मिनट में कुछ स्ट्रेचिंग करनी है। पुरानी आदत नई आदत के लिए एक प्राकृतिक ट्रिगर का काम करेगी।
एग्जैक्टली। और तीसरा और आखिरी टिप है, लगातार करने का जश्न मनाएं।
मतलब सेलिब्रेट करें।
हाँ, हमारा दिमाग तुरंत मिलने वाले इनाम यानी डोपामिन पर काम करता है। एक ही दिन में जोश में आकर जिम में घंटों पसीना बहाने से बेहतर है कि रोजाना सिर्फ 5 मिनट व्यायाम किया जाए और उस पर गर्व महसूस किया जाए।
राइट। लेकिन अगर ये सच है कि हमारी छोटी छोटी आदतें ही समय के साथ जुड़कर हमारी पहचान का निर्माण करती हैं, तो यहाँ सोचने वाली बात यह है, आज सुबह उठने से लेकर अब तक बिना सोचे समझे हमने जो भी छोटी छोटी आदतें दोहराई हैं, चाहे वो बिना वजह फोन अनलॉक करना हो या किसी काम को 5 मिनट के लिए टालना हो, वो आदतें आने वाले 5 सालों में हमारी कौन सी नई पहचान गढ़ने वाली हैं?
ये सच में सोचने वाली बात है।
क्या हम उस इंसान से मिलना चाहेंगे जो इन आदतों के नतीजे से बनकर तैयार होगा? शायद हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला कोई एक बड़ा कदम नहीं है, बल्कि वो छोटा सा चुनाव है जो हम इसी अगले पल करने वाले हैं।
बिल्कुल।
आज की इस चर्चा में हमारे साथ गहराई में उतरने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उन छोटे कदमों पर नजर रखिए क्योंकि वही आपकी असली मंजिल तय कर रहे हैं।